एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ज्ञान गोष्ठी में आज हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के इतिहास को बदलने वाले एक बहुत बड़े मतलब बहुत प्रभावशाली राजनीतिक प्रयोग की,
सोवियत संघ।
हाँ,
और इसे समझने के लिए हमारे पास है स्टीफन लोवेल की किताब द सोवियत यूनियन।
बिल्कुल, और ये विषय सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, जैसा आपने कहा, आज के रूस को समझने के लिए या कहिए दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है उसको समझने के लिए भी सोवियत संघ की कहानी जानना बहुत जरूरी है।
हाँ, सही कहा।
इसका बनना, फिर उसका विघटन और उसकी जो विरासत है, ये सब आज भी बहुत मायने रखता है।
तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस विशाल और सच कहूं तो काफी जटिल कहानी को, इसकी विचारधारा, इसके उतार चढ़ाव और हाँ वहां के आम लोगों पर इसके असर को आसान शब्दों में समझें। तो शुरू करें?
हाँ, क्यों नहीं। पहले शायद लेखक के बारे में थोड़ी बात कर ले। हाँ, स्टीफन लोवा। हाँ बिल्कुल, बताइए।
ये किंग्स कॉलेज लंदन में आधुनिक रूसी इतिहास के प्रोफेसर हैं, मतलब इस विषय के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं।
अच्छा, और उनकी खासियत क्या है? मतलब सिर्फ राजनीतिक घटनाओं पर ही लिखते हैं या कुछ और भी?
नहीं नहीं, यही खास बात है। लोवेल सिर्फ तारीखों और बड़ी घटनाओं तक सीमित नहीं रहते, वो आम सोवियत नागरिकों का जीवन कैसा था, उनके अनुभव, उनकी संस्कृति, इन सब पर भी बहुत ध्यान देते हैं।
अच्छा, ये तो दिलचस्प है।
हाँ, और ये उनके विश्लेषण को काफी गहरा बनाता है। वो रूसी भाषा और संस्कृति से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, वहाँ के आर्काइव्स में उन्होंने काम किया है। और उनका नजरिया मुझे काफी संतुलित लगता है। न तो वो पुराने शीत युद्ध वाले पूर्वाग्रहों में फंसे हैं, न ही बाद में जो एक तरह की सोवियत नॉस्टैल्जिया आई उसमें।
सही।
मुश्किल बातों को भी वो सरल और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं, जो इस किताब को खास बनाता है।
बहुत बढ़िया, चलिए अब किताब पर आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
देखिए, ये किताब सोवियत संघ के पूरे 74 साल के इतिहास का, मतलब 1917 से 1991 तक, एक बैलेंस्ड और गहराई से परिचय देती है। लोवेल हमें ये समझने को कहते हैं कि इसे सिर्फ बुराई का साम्राज्य या एक नाकाम यूटोपिया जैसे आसान लेबल लगाकर नहीं समझा जा सकता। कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल है।
ठीक है, तो फिर किताब का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है?
किताब का मुख्य तर्क यह है कि सोवियत संघ असल में एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण परियोजना थी।
आधुनिकीकरण परियोजना मतलब?
मतलब ये सिर्फ सत्ता बदलने की बात नहीं थी, इसका इरादा एक बिल्कुल नया समाज, एक नया इंसान गढ़ने का था। पूंजीवाद से अलग, पुरानी परंपराओं से मुक्त, एक तरह से समझिए एक पूरी नई सभ्यता बनाने का सपना था ये।
एक नया समाज, नया इंसान, ये सुनने में तो बड़ा आदर्शवादी लगता है, पर यही वो विरोधाभास भी आता है ना, जिस पे किताब शायद ध्यान दिलाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, यही किताब का एक अहम बिंदु है
कि कैसे एक सिस्टम जो आजादी, बराबरी, समृद्धि का वादा करता था, वही सिस्टम इतनी निगरानी, इतने दमन और आखिरकार आर्थिक ठहराव का शिकार कैसे हो गया।
सही। किताब इसी गैप को समझने में मदद करती है, विचारधारा के बड़े बड़े दावे और जमीनी हकीकत के बीच का फासला।
अच्छा।
और जैसा मैंने पहले कहा, यह सिर्फ क्रेमलिन या बड़े नेताओं की कहानी नहीं है। लोवेल ने मजदूरों, किसानों, बुद्धिजीवियों, मतलब आम लोगों के अनुभवों पर भी काफी जोर दिया है।
उनका रोज का जीवन कैसा था?
हाँ, उनका रोज का जीवन, शिक्षा, परिवार, और सबसे दिलचस्प कि उन्होंने उस सिस्टम के साथ कैसे तालमेल बैठाया, कैसे जिया, ये सब भी किताब का अहम हिस्सा है।
ठीक है, तो अब जरा इसके इतिहास के सफर पे चलते हैं, थोड़ा गहराई से। शुरुआत होती है क्रांति और गृह युद्ध से, 1917 से 1921 का दौर।
हाँ, जारशाही का पतन हुआ, जिसमें पहले विश्व युद्ध का जाहिर है बड़ा हाथ था, फिर बोल्शेविक सत्ता में आए। अब यहाँ लोवेल ये तर्क देते हैं कि ये शायद एक लोकप्रिय क्रांति से ज्यादा एक तरह का राजनीतिक तख्ता पलट था, जो इसलिए सफल हुआ क्योंकि बाकी ताकतें कमजोर पड़ गई थीं।
लेकिन लेनिन के नारे, शांति, जमीन और रोटी, उनका असर तो हुआ होगा।
हाँ बिल्कुल, उन नारों ने लोगों को खींचा जरूर, लेकिन सत्ता पर कब्जा एक अलग चीज थी, और उसके तुरंत बाद शुरू हो गया गृह युद्ध का भयानक दौर, करीब 1918 से 1921 तक।
लाल सेना बनाम श्वेत सेना।
बोल्शेविकों की लाल सेना और उनके विरोधियों की श्वेत सेना, ये बहुत क्रूर लड़ाई थी, और इसी दौर ने सोवियत राज्य का चरित्र काफी हद तक तय कर दिया। हिंसा आम हो गई, चेका यानी बोल्शेविकों की खुफिया पुलिस बहुत ताकतवर हो गई, और वॉर कम्युनिज्म जैसी सख्त नीतियां लागू हुई।
तो यहीं से वो आदर्शवाद थोड़ा पीछे छूटने लगा,
कह सकते हैं। यहीं से वो क्रांतिकारी आदर्शवाद धीरे धीरे सत्तावादी हकीकत में बदलने लगा।
अच्छा, इसके बाद नई आर्थिक नीति एनईपी का जिक्र आता है 1921 से 1928, ये क्या था?
हाँ, एनईपी। देखिए, गृह युद्ध ने अर्थव्यवस्था तबाह कर दी थी, तो लेनिन ने थोड़ी प्रैक्टिकल सोच दिखाई और एनईपी लागू की। ये एक तरह से समाजवाद से थोड़ी देर के लिए पीछे हटना था,
मतलब थोड़ी छूट दी गई।
हाँ, इसमें कुछ हद तक निजी व्यापार, छोटे उद्योगों की इजाजत दी गई। इससे अर्थव्यवस्था तो सुधरी, लेकिन पार्टी के अंदर ही विचारधारा को लेकर तनाव बढ़ गया कि ये हम समाजवाद से भटक तो नहीं रहे।
समझ सकती हूँ।
और इसी दौरान लेनिन की मौत 1924 के बाद पार्टी में सत्ता के लिए संघर्ष तेज हुआ और धीरे धीरे स्टालिन सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे।
इसी दौर में कुछ सांस्कृतिक बदलाव भी हुए थे शायद?
हाँ बिल्कुल, जैसे लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने के बड़े अभियान चले, एक नई सोवियत संस्कृति बनाने की कोशिशें हुई, पारंपरिक पारिवारिक ढांचे को बदलने के प्रयास भी हुए।
और फिर आता है स्टालिन का दौर 1928-1941, इसे लोवेल ऊपर से क्रांति कहते हैं, क्यों?
हम ऊपर से क्रांति इसलिए क्योंकि ये जनता की इच्छा से नहीं बल्कि ऊपर से, मतलब स्टालिन और पार्टी नेतृत्व द्वारा जबरदस्ती थोपी गई थी। इसके दो मुख्य स्तंभ थे।
क्या थे वो?
पहला, बहुत तेजी से औद्योगिकरण, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं, बड़े बड़े कारखाने लगे, और दूसरा, कृषि का जबरदस्ती सामूहिकीकरण।
सामूहिकीकरण मतलब किसानों से जमीन छीन लेना?
हाँ बिल्कुल, किसानों से उनकी जमीनें छीनकर बड़े बड़े सरकारी या सामूहिक फार्म बनाए गए। औद्योगिकरण तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, सोवियत संघ एक औद्योगिक ताकत बना, लेकिन इसकी इंसानी कीमत बहुत बहुत भारी थी। और सामूहिकीकरण तो एक तरह से किसानों के खिलाफ युद्ध जैसा था, जबरदस्ती, विरोध करने वालों का दमन, और इसके कारण भयानक अकाल पड़े।
हाँ, यूक्रेन के अकाल, होलोडोमोर के बारे में सुना है?
हाँ, खासकर यूक्रेन में जहाँ लाखों लोग भूख से मारे गए। ये बहुत ही त्रासद दौर था, और इसी दौर में वो महान आतंक या ग्रेट पर्जेस 1936-38 भी चले।
वो क्या था?
इसमें पार्टी के अंदर, सेना में, बुद्धिजीवियों में, यहाँ तक कि आम लोगों में भी स्टालिन ने अपने कथित या वास्तविक विरोधियों का सफाया करवाया। लाखों लोगों को मार दिया गया या गुलाग भेज दिया गया।
गुलाग, ये वो सख्त मजदूरी वाले कैंप थे?
हाँ, साइबेरिया, दूसरी जगहों पर सख्त मजदूरी वाले कैंपों का एक पूरा नेटवर्क। स्टालिन का आतंक सिर्फ विरोधियों को खत्म करने के लिए नहीं था, ये पूरे समाज पर एक डर का माहौल बनाकर कंट्रोल करने का तरीका था।
कितना भयानक। अच्छा, इसके बाद आता है महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध, यानी दूसरा विश्व युद्ध, 1941 से 1945। लोवेल इसे सोवियत संघ का निर्णायक अनुभव मानते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये शायद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान था। शुरुआत में जर्मनी ने जबरदस्त हमले किए, सोवियत सेना को भारी नुकसान हुआ, इसमें स्टालिन की अपनी गलतियां भी थीं।
लेकिन फिर वो जीत गए।
हाँ, आखिरकार जीत गए। शासन ने सेना और आम लोगों की देशभक्ति दोनों को बड़ी कुशलता से एकजुट किया, नाजी जर्मनी पर जीत हासिल की, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी, करोड़ों लोग मारे गए।
युद्ध का समाज पर क्या असर पड़ा?
गहरा असर पड़ा। उद्योगों को आनन फानन में पूर्व की ओर ले जाना पड़ा, महिलाओं ने कारखानों और खेतों में, यहाँ तक कि सेना में भी बड़ी भूमिका निभाई, और इस युद्ध ने सोवियत पहचान और रूसी राष्ट्रवादी पहचान को एक जटिल तरीके से मिला दिया। इस जीत ने स्टालिन और सोवियत सिस्टम को एक जबरदस्त कह सकते हैं नैतिक बल दिया, एक वैधता दी, लेकिन इसने सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियों को भी उजागर किया।
ठीक है, युद्ध के बाद फिर स्टालिन की मौत और पिघलाव का दौर 1945 से 1964, इसमें क्या हुआ?
युद्ध के बाद देश का पुनर्निर्माण हुआ, उधर दुनिया में शीत युद्ध शुरू हो गया, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना प्रभाव जमाया, वहां भी सोवियत मॉडल लागू किया गया।
और स्टालिन के आखिरी साल कैसे थे?
वो फिर से काफी दमनकारी थे, लेकिन 1953 में स्टालिन की मौत हो गई और उसके बाद निकिता ख्रुश्चेव सत्ता में आए।
ख्रुश्चेव का नाम तो सुना है, उन्होंने स्टालिन की निंदा की थी।
1956 में पार्टी कांग्रेस में उन्होंने एक गुप्त भाषण दिया जिसमें स्टालिन के अपराधों, उनके व्यक्तित्व पंथ की कड़ी आलोचना की। इसे डी स्टालिनाइजेशन कहा गया। इसका बहुत बड़ा असर हुआ।
तो क्या माहौल बदला?
हाँ, कुछ हद तक। इसके बाद थॉ यानी पिघलाव का दौर आया, राजनीतिक माहौल थोड़ा नरम हुआ, लाखों कैदी गुलाग से रिहा हुए, साहित्य और कला पर सेंसरशिप कुछ कम हुई, उपभोक्ता वस्तुओं पर थोड़ा ध्यान दिया गया।
लेकिन ये छूट सीमित थी शायद?
बिल्कुल, पार्टी का कंट्रोल वैसे का वैसा बना रहा, और जब 1956 में हंगरी में सोवियत प्रभाव के खिलाफ विद्रोह हुआ तो उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। फिर क्यूबा मिसाइल संकट भी इसी दौर में हुआ।
समझ गई। और फिर आता है आखिरी दौर, ठहराव और सुधार, 1964 से 1991।
हाँ, ख्रुश्चेव को 1964 में हटा दिया गया और लियोनिद ब्रेजनेव आए, उनका लंबा शासनकाल 1964 से 1982 आमतौर पर ठहराव का युग यानी ईरा ऑफ स्टैग्नेशन कहलाता है।
ठहराव क्यों?
क्योंकि ऊपर से सब शांत और स्थिर दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम जड़ों रहा था। आर्थिक विकास धीमा पड़ गया था, आधिकारिक तौर पे तो विकसित समाजवाद का दावा किया जाता था, लेकिन
हकीकत कुछ और थी।
हाँ, एक तरह का अनकहा सामाजिक समझौता था। सरकार लोगों को नौकरी, घर, सस्ती चीजें जैसी बुनियादी सुरक्षा देगी, बदले में लोग राजनीति से दूर रहेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे।
पर ये कब तक चलता?
ज्यादा देर नहीं। लोगों में धीरे धीरे निराशा बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों से पिछड़ रही थी, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए थे, चीजों की कमी थी, दुकानों पे लंबी कतारें आम थी, एक दूसरी अर्थव्यवस्था यानी ब्लैक मार्केट पनप गया था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, उदासीनता, ये सब आम हो गया था।
और इसी माहौल में गोर्बाचेव आए।
हाँ, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव नेता बने। वो युवा थे, ऊर्जावान थे और उनका इरादा सिस्टम में सुधार लाने का था। वो समझ रहे थे कि ऐसे नहीं चल सकता।
उन्होंने वो ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका शुरू किया था ना?
बिल्कुल। ग्लासनोस्त यानी खुलापन, लोगों को बोलने की, लिखने की, इतिहास पर सवाल उठाने की आजादी, और पेरिस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सिस्टम में बदलाव की कोशिश।
लेकिन ये सुधार की कोशिशें ही अंत का कारण बन गई।
हाँ, अजीब बात है पर यही हुआ। सुधार अनपेक्षित रूप से पतन का कारण बने। खुलापन आया तो दशकों से दबे हुए सच बाहर आ गए। स्टालिन के अत्याचार, पर्यावरण की समस्याएं, अफगानिस्तान युद्ध की सच्चाई,
और राष्ट्रवाद का मुद्दा भी उठा।
हाँ, खासकर गैर रूसी गणराज्यों में, बाल्टिक देशों में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में राष्ट्रीय भावनाएं भड़क उठी। लोग ज्यादा आजादी या पूरी आजादी मांगने लगे। आर्थिक सुधारों ने भी शुरू में हालात और बिगाड़ दिए, चीजों की कमी और बढ़ गई।
और फिर तो सब बहुत तेजी से हुआ।
बहुत तेजी से। 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। पूर्वी यूरोप के देशों ने कम्युनिस्ट शासन उखाड़ फेंका, बाल्टिक राज्य अलग होने की राह पर चल पड़े, रूस के अंदर बोरिस येल्सन एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। अगस्त 1991 में कुछ पुराने नेताओं ने गोर्बाचेव के खिलाफ तख्तापलट की नाकाम कोशिश की।
हाँ, वो टैंकों वाली तस्वीरें याद हैं।
और उसके बाद तो बस सोवियत संघ का ताश के पत्तों की तरह बिखरना तय हो गया। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ औपचारिक रूप से समाप्त हो गया।
वाह, क्या जबरदस्त कहानी है। हाँ। तो इस पूरी कहानी से कुछ बड़े सबक क्या निकलते हैं जो किताब बताती है?
हाँ, कई बड़े सबक हैं। पहला तो वही कि सोवियत संघ एक आधुनिकीकरण की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विचारधारा और जमीनी हकीकत में हमेशा एक बड़ा फासला बना रहा।
जैसे आपने वो उदाहरण दिया था, अंतरिक्ष में तो पहुंच गए पर आम लोगों के लिए जरूरत की चीजें जुटाना मुश्किल था।
बिल्कुल। दूसरा, विचारधारा की भूमिका बहुत अहम थी। मार्क्सवाद लेनिनवाद सिर्फ सरकारी प्रचार नहीं था, ये एक असली विश्वास प्रणाली थी जिसने लाखों लोगों को सच में प्रेरित किया था, उन्हें एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया था।
लेकिन
जब वादे पूरे नहीं हुए, जब हकीकत कुछ और निकली, तो वही विचारधारा धीरे धीरे खोखली लगने लगी। इससे लोगों में निराशा आई और वो जिसे कहते हैं दोहरी सोच पैदा हुई।
दोहरी सोच मतलब कहना कुछ और मानना कुछ और?
हाँ बिल्कुल। सार्वजनिक रूप से आप पार्टी लाइन दोहरा रहे हैं पर निजी तौर पर आप शायद उस पर विश्वास नहीं करते। ये किसी भी बंद सिस्टम में अक्सर देखने को मिलता है।
हाँ, ये बात तो कहीं ना कहीं आज भी दिखती है। अच्छा, तीसरा सबक।
तीसरा, राज्य द्वारा समाज को बदलने के लिए हिंसा का इस्तेमाल। लेनिन से लेकर स्टालिन तक हिंसा को अक्सर एक जरूरी साधन माना गया, क्रांति को बचाने के लिए या समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए।
ये बहुत परेशान करने वाली बात है कि मुक्ति का वादा करने वाली व्यवस्था इतनी क्रूर कैसे हो सकती है।
सही। चौथा सबक है, आम लोगों का जीवन, उनका नजरिया, द लिव्ड एक्सपीरियंस। किताब ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि आम सोवियत नागरिक, जिसे कभी कभी होमो सोवियटिकस कहा गया, वो सिर्फ सिस्टम का पुर्जा या शिकार नहीं था।
तो वो क्या था?
उसने सरकारी उम्मीदों और अपनी निजी इच्छाओं, जरूरतों के बीच संतुलन बनाना सीखा। लोगों ने अपने अनौपचारिक नेटवर्क बनाए, दोस्तियां की, सिस्टम के अंदर रहते हुए जीने के, थोड़ी खुशी पाने के तरीके ढूंढ लिए। उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया।
और पांचवा सबक।
पांचवा, बहुजातीय साम्राज्य और राष्ट्रीयता का अनसुलझा सवाल। सोवियत संघ सिर्फ रूस नहीं था, उसमें दर्जनों अलग अलग राष्ट्र और संस्कृतियां थी।
हाँ।
शुरू में तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद का नारा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे रूसी प्रभाव हावी होता गया। राष्ट्रीय पहचान को दबाने की कोशिश हुई पर वो अंदर ही अंदर सुलगती रही और आखिरकार जैसा हमने देखा इसके विघटन का एक बड़ा कारण बनी।
हाँ, किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे आपने बताया।
बिल्कुल, लोवेल कुछ बहुत शक्तिशाली विचार सामने रखते हैं, जैसे ये विचार कि सोवियत संघ सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक आस्था थी, और सभी आस्थाओं की तरह ये केवल आज्ञाकारिता ही नहीं बल्कि विश्वास की भी मांग करती थी। ये बात विचारधारा की ताकत और जब वो टूटती है तो उसके असर को दिखाती है।
और स्टालिन पर वो बात भी बहुत अहम है। स्टालिन की क्रांति लेनिन से ज्यादा गहरी थी। इसने न केवल सत्ता किसके हाथ में है यह बदला, बल्कि सत्ता का प्रयोग कैसे किया जाता है और उसका लक्ष्य क्या है इसे भी बदल दिया।
हाँ, ये स्टालिन के दौर के स्थायी संरचनात्मक प्रभाव पर जोर देता है कि उसने सिस्टम को किस तरह मौलिक रूप से बदल दिया।
युद्ध के बारे में भी एक दिलचस्प बात है।
हाँ, कि महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध ने सोवियत संघ को बचाया क्योंकि इसने उसे एक ऐसा उद्देश्य दिया जो विचारधारा से परे था और लोकप्रिय देशभक्ति से जुड़ा था। मतलब युद्ध ने सिस्टम को एक ऐसी वैधता दी जो शायद अकेली विचारधारा नहीं दे पा रही थी।
और ब्रेजनेव युग के बारे में यह अवलोकन भी काफी दिलचस्प लगा। 1970 के दशक तक सोवियत संघ ने अपने आधुनिकीकरण के लक्ष्य इतने पूरी तरह से हासिल कर लिए थे कि उसे अब पता ही नहीं था कि उसका उद्देश्य क्या है। ये ठहराव का एक अजीब कारण बताता है कि सफलता ने ही उद्देश्यहीनता पैदा कर दी।
बिल्कुल, और आखिर में गोर्बाचेव के बारे में वो बात। गोर्बाचेव की त्रासदी ये थी कि उन्हें विश्वास था कि सोवियत व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, जबकि इसे केवल बदला जा सकता था या संरक्षित रखा जा सकता था।
मतलब शायद सिस्टम इस हद तक बिगड़ चुका था कि उसमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं बची थी। या तो वो बदलता या फिर जैसे तैसे चलता रहता।
हाँ, ये सुधारों की विफलता और सिस्टम के अंदरूनी विरोधाभासों को दर्शाता है।
तो इस सब इतिहास से, इन विचारों से हम आज के लिए क्या सीख सकते हैं, कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस?
जरूर। पहली बात तो ये है कि ये इतिहास हमें आज की दुनिया में जो तानाशाही या अर्ध तानाशाही व्यवस्थाएं हैं उन्हें समझने में मदद करता है।
कैसे?
कि वो कैसे विचारधारा का इस्तेमाल करती हैं, कैसे सूचना पर नियंत्रण रखती हैं, कैसे डर का माहौल बनाती हैं। सोवियत अनुभव हमें इन तकनीकों को पहचानने में मदद करता है।
हाँ, ये तो बहुत प्रासंगिक है।
दूसरी सीख है यूटोपियन विचारधाराओं के खतरों के बारे में। चाहे इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हों, जब किसी एक विचारधारा को कट्टरता से जमीन से कटकर लागू किया जाता है तो उसके नतीजे भयानक हो सकते हैं।
ये हमें हर उस राजनीतिक आंदोलन या विचार के प्रति सचेत करता है जो दुनिया की सारी समस्याओं का एकमुश्त समाधान देने का दावा करता है। थोड़ा संदेह करना जरूरी है।
बिल्कुल। तीसरी बात, ये अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था जहां लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी ना हो रही हों, वो आखिरकार राजनीतिक व्यवस्था की जड़ें हिला देती हैं।
ये तो हर सरकार के लिए एक सबक है।
हाँ, और चौथी बात, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। सोवियत संघ ने इसे दबाने की, एक रूपता लाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। ये आज की दुनिया में जहां बहुसंस्कृतिवाद और पहचान के मुद्दे इतने अहम हैं, उसे समझने के लिए बहुत प्रासंगिक है।
सही कहा। और क्या सीख सकते हैं?
एक और अहम चीज है आलोचनात्मक सोच विकसित करना और प्रचार को पहचानना। ये जानना कि कैसे सोवियत राज्य ने सूचनाओं को तोड़ा मरोड़ा, इतिहास को बदला, हमें आज के दुनिया में भी जहां सूचनाओं की बाढ़ है ज्यादा सतर्क और सवाल पूछने वाला बनाता है। हमें हर चीज पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल सही। तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है आपके लिए?
What's the final takeaway? मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि सोवियत संघ जैसे जटिल, विशाल ऐतिहासिक अनुभव को हम किसी आसान खांचे में नहीं डाल सकते। उसे अच्छा या बुरा, सफल या असफल कहकर नहीं समझा जा सकता।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या कहूं कि सोचने पर मजबूर करने वाली है वो ये है कि कैसे एक सिस्टम जो इतने बड़े पैमाने पर इतनी महत्वाकांक्षा के साथ समाज को बदलना चाहता था, वो आखिरकार अपने ही अंदरूनी विरोधाभासों, अपने ही बनाई समस्याओं के बोझ तले ढह गया।
हाँ, ये दिखाता है कि बड़ी से बड़ी योजनाएं, बड़ी से बड़ी विचारधाराएं भी इंसानी स्वभाव की सीमाओं, अनचाहे नतीजों और जमीनी हकीकत से बंधी होती हैं। शायद ये राज्य की शक्ति और विचारधारा की सीमाओं का एक बहुत शक्तिशाली सबक है।
बिल्कुल। और ये इतिहास हमें ये भी याद दिलाता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल, दमनकारी व्यवस्थाओं में भी आम लोग जीने के तरीके ढूंढ लेते हैं, अपनी इंसानियत, अपनी गरिमा बनाए रखते हैं।
हाँ,
ये बात भी जरूरी है। सोवियत प्रयोग खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। वो आज भी दुनिया को, खासकर रूस और उसके पड़ोसी देशों को, और कहीं ना कहीं हम सबको भी प्रभावित कर रही है। इसलिए उसे समझना हमारे अपने समय को समझने के लिए बहुत जरूरी है।
और शायद ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि क्या इतिहास में बड़े पैमाने पर समाज को बदलने की हर महत्वाकांक्षी परियोजना कहीं ना कहीं अपनी ही विचारधारा की सीमाओं और अनपेक्षित मानवीय परिणामों से टकराने के लिए अभिशप्त होती है? ये एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, इस पर सोचते रहना चाहिए। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अखत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।